अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 23 मार्च 1940 वो दिन है जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर के मंटो पार्क में अपने सालाना इजलास में करारदाद मंजूर की। ये करारदाद करारदाद पाकिस्तान कहलाती है और इसी के मुनासबत से हम 23 मार्च को हर साल उस करारदाद की याद में त्यौहार मनाते हैं। उस करारदाद की याद में छुट्टी होती है और ये पाकिस्तान का एक कौमी दिन तसव्वुर किया जाता है। उस करारदाद की बुनियाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की जद्दोजहद का आगाज़ किया, तहरीक का आगाज़ किया और 7 बरस के अंदर अंदर ये तहरीक अपनी कामयाबी तक पहुंची। आज हम गुफ्तगू करेंगे यौम पाकिस्तान और रियासत के तसव्वुर के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस करारदाद के खदोखाल क्या थे और उसमें जो नज़रिया पेश किया गया वो नज़रिया क्या था और आज पाकिस्तान में वो नज़रिया किस हद तक मौजूद है, इम्प्लीमेंटेड है और अगर नहीं है तो उसकी क्या वजूहात हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब और उसके साथ साथ हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हम सवालात लेंगे इसी मुनासबत से। जावेद साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि नज़रिया पाकिस्तान की हकीकत है क्या जो कि उसका जिससे तहरीक का आगाज़ हुआ।
ये आप जानते हैं कि एक ज़माना वो रहा है जिसमें ममलकतें हाकिम और महकूम के ताल्लुक से वजूद पज़ीर होती थी। रियासत की अगर आप इब्तदाई तारीख का मुताला करें तो ये कबाइल थे जो अपने शेख मुकर्रर कर लेते थे और कबीले का एक नज़म भी वजूद में आ जाता था। आप कह सकते हैं कि एक छोटे से इलाके में एक कदीम तरस की इब्तदाई रियासत कायम हो जाती थी। यही रियासतें हैं जिन्होंने आगे बढ़कर फिर मुनज़्ज़म रियासत की तरफ कदम बढ़ाया और उससे एम्पायर वजूद में आए। ये जो बड़े बड़े एम्पायर हैं जैसे सासानी सल्तनत है, जैसे रूमी सल्तनत है, बाद में अब्बासिया, बाद में उमविया सल्तनत कायम हुई, ये जितनी बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं इनमें लोगों के साथ जो ताल्लुक़ पैदा होता था वो हाकिम और महकूम का ताल्लुक़ था और ये आम तौर पर फतूहात की बुनियाद पर कायम होती थी। यानी कोई कौम, कोई गिरोह, कोई कबीला, कोई फ़र्द वो अपनी अस्करी ताकत के ज़रिए से किसी इलाके पर या मुख्तलिफ़ अकवाम पर या मुख्तलिफ़ मुल्कों पर कब्ज़ा कर लेता था और बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम कर लेते थे। चुनाचे आप उस ज़माने की फतूहात का जब ज़िक्र पढ़ते हैं तो आप इस्कंदर का ज़िक्र पढ़ते हैं, आप और इस तरह के बहुत से फातहीन का ज़िक्र देखते हैं कि जिन्होंने बहुत बड़े बड़े इलाकों को रौंद डाला, बड़ी बड़ी हुकूमतें कायम की और ये हुकूमतें ज़ाहिर है कि हाकिम और महकूम के ताल्लुक़ से कायम होती थी। इसमें जो बादशाह या हुक्मरान है या फातह है वो जिस चीज़ को कहता है कि ये कानून है वही कानून करार पा जाती थी। ये मामला बरतानवी सल्तनत तक रहा है, यानी ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। बरतानवी सल्तनत वो आखिरी सल्तनत थी जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इस सल्तनत में सूरज ग़ुरूब नहीं होता और ये आपको मालूम है कि इस वक्त की दुनिया के बहुत बड़े हिस्से तक वो सल्तनत फैली हुई थी। मशरिक़ वुस्ता के बहुत से इलाकों में थी, हिंदुस्तान में थी, मशरिक़ बईद में थी, ऑस्ट्रेलिया में जा कायम हो गई, कनाडा में कायम हो गई, अमेरिका में कायम हो गई। यानी ये बहुत बड़ी सल्तनत थी दुनिया की और ये आखिरी सल्तनत थी जिसमें हाकिम और महकूम के ताल्लुक़ से लोग एक मुनज़्ज़म रियासत की सूरत में रहते थे। ये चीज़ पहली दूसरी जंग अज़ीम के बाद मुजमेल होना शुरू हुई और इस महलाल के ज़माने में दुनिया में बहुत सी फ़िक्री तब्दीलियाँ भी आईं। उनमें से दो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं जो उस वक्त गोया एक आलमी फ़िक्र की हैसियत इख्तियार कर गई थी। उनमें से एक चीज़ ये थी कि अब हाकिम और महकूम के ताल्लुक़ के बजाय लोगों की राय से हुकूमतों को कायम होना चाहिए, वो बराबर के शहरियों की हैसियत से शरीक हों और वो अपने हुक्मरानों का इंतखाब करें। गोया जमहूरियत को एक उसूल के तौर पर तस्लीम किया जाने लगा।
ये आप जानते हैं, ये बात आप फरमा रहे हैं दूसरी जंग अजीम के बाद,
पहली दूसरी जंग अजीम के ज़माने में ये चीज़ बड़ी नुमाया होना शुरू हो गई। उससे बहुत पहले ही, यानी जमहूरियत की तारीख तो बहुत पुरानी है, आप जानते हैं कि यूनान में भी इब्तदाई जमहूरियतें मौजूद थीं, लेकिन इस ज़माने में आकर हाकिम और महकूम के ताल्लुक़ की बजाय इस ताल्लुक़ ने ज़्यादा फ़रोग पाना शुरू हुआ और इसके साथ ही कौमी रियासत का तसव्वुर भी ज़्यादा मुस्तहकम हुआ और ये कौमी रियासत भी वतनीयत की बुनियाद पर कायम होने लगी। यानी एक इलाके में जो लोग रहते हैं वो सारे के सारे मिलकर एक कौम बन जाते हैं और इस लिहाज से हक़ खुद इरादी का एक उसूल भी तस्लीम कर लिया गया। ये दो चीज़ें हैं जो पस मंज़र में रहनी चाहिए। ये पस मंज़र है जिसमें हिंदुस्तान में ये मसला सामने आ गया कि अब बरतानिया को यहाँ से रुख्सत होना है, एक अजीम सल्तनत अपने सारे साजो सामान के साथ अपने वतन रवाना होने वाली है, हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया जाएगा। अब हिंदुस्तान अगर आज़ाद होगा तो किस उसूल पर आज़ाद होगा? यानी एक उसूल तो ये हो सकता था कि पहले से यहाँ कोई सल्तनत कायम थी, आपने उनको ये सपुर्द कर दिया। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि जब मलेशिया आज़ाद हुआ, मलेशिया तो उस वक्त खैर इस नाम से मौजूद ही नहीं था, मलाया आज़ाद हुआ, तो वहाँ बहुत सी बादशाहतें मौजूद थीं, उन्हीं बादशाहतों को इकतदार मुंतकिल कर दिया गया।
ठीक,
हिंदुस्तान की सूरत यह थी कि यहाँ एक तरफ बरतानवी हिंद था जिसमें अंग्रेज़ बराह रास्त हुकूमत कर रहे थे, और दूसरी तरफ सैकड़ों की तादाद में रियासतें भी मौजूद थीं। तो कोई ऐसा फार्मूला कि जिसमें पूरे हिंदुस्तान का इकतदार मुंतकिल किया जा सके, वो नहीं बनाया जा सकता था। और ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई थी कि दुनिया में एक फ़िक्री तब्दीली आ गई है, लिहाजा अब जमहूरी उसूलों की बुनियाद पर हिंदुस्तान का नज़्म मुंतकिल होगा। जमहूरी उसूलों पर जब नज़्म मुंतकिल होगा तो उसका एक लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि यहाँ हिंदू अक्सरियत में थे, हुकूमत उन्हीं के पास चली जाएगी। ये पस मंज़र है जिसमें ये सवाल पैदा हुआ कि मुसलमान अपनी एक तहजीब रखते हैं, अपनी एक सकाफ़त रखते हैं, अपना एक इल्मी पस मंज़र रखते हैं, अपनी एक तारीख़ रखते हैं, उनकी कुछ मज़हबी रवायात हैं, उनके रहन सहन के मामलात में बहुत से इख्तलाफात हैं, वो अपना एक कानूनी निज़ाम भी रखते हैं। ये तमाम चीज़ें हिंदुस्तान में जब हिंदुओं की अक्सरियत की बुनियाद पर एक रियासत कायम होगी तो किस तरह महफूज रखी जा सकेंगी, ये बुनियादी सवाल है जो मुसलमानों की क़्यादत के सामने था। मोहम्मद अली जिन्ना ने उस ज़माने में, जिनको हमने बाद में कायद आज़म कहा, उन्होंने अपने 14 निकात पेश किया। आपको जान मालूम है कि 14 निकात में यही चीज़ें थी जिनको वाज़े करने की कोशिश की गई थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुसलमानों की तहजीब, सकाफ़त, रवायात, रसूम, रिवाज, उनका मज़हब, इसी तरीके से उनकी ज़ुबान और बहुत सी दूसरी चीज़ें अक्सरियत रोंद डालें।
ठीक,
उनको कोई ख़तरा लाहक हो जाए, वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों से छीन ली जाए। ये गोया एक ख़ुद हिफाजती का जज्बा है जिसके तहत ये चीज़ लोगों के सामने लाई गई कि कोई मुआहदा होना चाहिए, यानी कोई सोशल कॉन्टेक्ट वजूद में आना चाहिए दोनों कौमों के दरमियान, जो दो बड़ी कौमें हैं। और उसमें सबसे पहले ये मुकदमा कायम किया गया कि मुसलमान यहाँ कोई बिखरी हुई छोटी सी अकलियत नहीं है, कोई माइनॉरिटी नहीं है, वो एक बड़ी अक्सरियत है, और बाज़ जगहों के ऊपर उनकी अक्सरियत यानी पूरे पूरे इलाकों में है, जैसे शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में, जिस तरह मशरकी हिंदुस्तान में। तो इन दोनों जगहों पर तो ख़ास तौर पर मुसलमानों की बहुत बड़ी अक्सरियत भी थी। तो ये ज़ाहिर है कि एक कौम कही जा सकती है, एक कौम जो अपनी शनाख्त रखती है, जो अपनी तहजीब रखती है, जो अपनी रवायात रखती है, जो अपना मज़हब रखती है, जिसके अपने रहन सहन के आदाब हैं। ये सूरत हाल है जिसमें कायदे आज़म ने यह कहा कि मुसलमान हिंदुओं की अक्सरियत को अपने ऊपर डोमिनेट करते हुए बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो कोई महज एक अकलियत नहीं है, वो एक कौम है और अपनी पूरी रवायात और शनाख्त के साथ एक कौम है, लिहाजा उनके कौमी हुकूक़ का तहफ़ होना चाहिए। तो पहले मरहले में सिर्फ इतनी बात कही गई कि उस तहफ़ का कोई रास्ता निकाला जाए, उसके लिए बहुत से फार्मूले ज़ेर बहस आए कि किस तरीके से हिंदुस्तान का नज़म चलाया जाएगा। उनको दोनों फरीकों से मनवाने में कामयाबी नहीं हुई, यानी पै दर पै नाकामियाँ हुई उसमें। जो बातें मुसलमानों की तरफ से कही गईं उनको आमतौर पर हिंदुओं की क़्यादत ने कबूल नहीं किया। हिंदुओं की क़्यादत उस वक्त कांग्रेस के हाथ में थी, तो कांग्रेस के लीडर बहुत सी चीज़ों पर तनकीद भी करते रहे, कबूल करने के लिए तैयार भी नहीं हुए। फिर एक बड़ा किरदार उसमें महात्मा गांधी की शख्सियत ने भी अदा किया, वो असल में सियासत में मज़हब को ले आए थे, और मज़हब, मज़हबी रवायात, मज़हबी तलमीहात, वो ख़ुद भी अपने आप को मिस्टर गांधी के बजाय महात्मा कहलवाना पसंद करते थे। ये चीज़ भी कायदे आज़म के लिए बहुत ज़्यादा गुरेज का बायस बनी। आपको मालूम है कि एक ख़ास इजलास में जब उन्होंने ये कहा मिस्टर गांधी, और लोगों ने उसके ऊपर बहुत हंगामा किया और ये चाहा कि वो महात्मा गांधी कहें, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए और वहाँ से उठकर चले आए। तो ये सूरत हाल थी जिसने एक कश्मकश पैदा कर दी। मुसलमानों ने अपनी हिफाजत के लिए कुछ इकदाम तजवीज़ किए, उनको कांग्रेस कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुई। बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक पहुँच गई कि फिर मुसलमानों ने यह महसूस किया कि अब शायद इसके सिवा कोई चारा नहीं है, अमली हल यही हो सकता है कि हिंदुस्तान के उन इलाकों में जहाँ मुसलमान अक्सरियत में है, वहाँ उनका एक कौमी वतन कायम कर दिया जाए और इस लिहाज से हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो जाए। चुनाचे ये चीज़ है कि जिसको करारदादे पाकिस्तान में बड़े इब्तदाई अंदाज़ में बयान किया गया। ज़ाहिर है कि ये सब चीज़ें एक दिन में नुमायाँ नहीं हो जाती। मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि ख़ुद कायदे आज़म मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हामी थे, बल्कि उसके सफ़ीर कहे जाते थे। उन्होंने इब्तदा में यही कोशिश की कि हिंदुस्तान के जो आइन वजूद में आएगा उसके दायरे में मुसलमानों के हकूक़ की कोई रास्ता निकाला जा सके। वो जब इसमें कामयाब नहीं हुए और मुसलमानों का एतमाद उनको हासिल था, तो उन्होंने इसी को एक अमली हल की हैसियत से पेश किया और बतदरीज मुसलमानों के यहाँ जो क़्यादत मौजूद थी वो पसपा होती चली गई। पहले तो मुसलमानों की क़्यादत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नुक्ता नज़र इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो समझते थे कि हिंदुस्तान को
यहाँ पर ये जो दो डिफरेंट किस्म की जो लीडरशिप थी, पॉलिटिकल और रिलीजियस, इसको कैसे लेके चल रही थी? ये
ये देखिए, ये नहीं है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद महज कोई एक मजहबी रहनुमा थे, वो एक सियासी रहनुमा थे, और एक सियासी रहनुमा की हैसियत से वो कांग्रेस के प्लेटफार्म पर मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे थे। उनका नुक्ता नज़र ये था इस मामले में कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ना हमें अपने हुकूक़ के लिए कोई इस तरह के निकात मनवाने हैं। एक जमहूरी माशरा कायम होगा और हम अपनी सलाहियत की बुनियाद पर एक कौमी वतन में अपनी हैसियत मनवा लेंगे। ये एक नुक्ता नज़र है, इसको आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादा उम्मीद पर मबनी है या इसमें ज़्यादा नज़री पहलू पेश नज़र है, लेकिन कायदे आज़म के सामने जो सूरत हाल थी वो मुसलमानों की नफ्सियात, मुसलमानों की ज़हनी कैफियत, मुसलमान जिस पस मंज़र में एक तवील अरसे से दुनिया पर हुकूमत करते रहे थे, चुनाचे वो बार बार अगर आप उनकी तकरीरें सुने तो वो ये कहते हैं कि मुसलमान कभी भी इस बर्तरी को कबूल नहीं करेंगे, नफसियाती तौर पर कबूल नहीं करेंगे, और इस तरह हिंदुस्तान में मुस्तकिलन एक कशमकश रहेगी। लिहाजा अमली हल यही है, यानी एक प्रैक्टिकल हल है जो उन्होंने पेश किया, वो यही है कि एक अलग रियासत बना दी जाए। ये रियासत एक कौमी रियासत होगी, मुसलमानों की कौमी रियासत, उधर हिंदुस्तान में हिंदुओं की एक कौमी रियासत वजूद में आ जाएगी, उसमें भी कुछ अकलियतें होंगी, इसमें भी कुछ अकलियतें होंगी, और ये रियासत वतन के तसव्वुर पर होगी, यानी जिसमें कौमियत की बुनियाद वतन होगा। ये चीज़ है कि जिसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान का नज़रिया पेश किया गया, इसी को बुनियाद बनाकर हिंदुस्तान तकसीम हुआ, और इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान के दोनों हिस्से वजूद में आए।
जावेद साहब, आपने फरमाया अबुल कलाम आज़ाद साहब के बारे में फरमाया कि वो पॉलिटिकल वो भी व्यू रखते थे, लेकिन एक हम देखते हैं कि मजहबी लीडरशिप भी मौजूद थी और जिसका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप में और जो मजहबी लीडरशिप है उसके डिफरेंस, मतलब क्या डिफरेंस था, बुनियादी क्या फ़र्क था दोनों में?
जो मजहबी लीडरशिप उस वक्त मौजूद थी वो ज़्यादातर जमीयत उलमाए हिंद के पास थी,
ठीक,
और जमीयत उलमाए हिंद के जो बड़े लोग थे, खुद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी जमीयत उलमाए हिंद के सरबराह रहे, यानी उनकी एक मजहबी हैसियत भी थी। वो फिर कांग्रेस में चले गए तब उनकी एक सियासी हैसियत नुमाया हुई,
ठीक।
तो जो तमाम जमीयत उलमाए हिंद के अकाबिर थे या बड़े लीडर थे या रहनुमा थे, वो ज़्यादातर उलमा थे। उन्होंने ये फैसला किया कि इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मौक़िफ़ ही दुरुस्त है, चुनाचे वो ज़्यादातर उनके साथ थे, लेकिन उनका एक हिस्सा बाद में फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का साथ देने के लिए भी तैयार हो गया, जिसमें मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी बहुत नुमाया हुए बाद में। तो एक हिस्सा, ज़्यादातर लोग वही थे कि जिन्होंने कांग्रेस के नुक्ता नज़र को या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नुक्ता नज़र को ज़्यादा सही समझा, और वो नुक्ता नज़र मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया, वो ये था कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में हमें कोई ख़तरा नहीं है, हम बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, कई सूबों में हमारी हुकूमतें होंगी, हम हिंदुस्तान की इस सरज़मीन पर अपना हक रखते हैं, अगर हम कोई अलग मुल्क बनाते हैं तो इसके नतीजे में बहुत से मुसलमान यहाँ रह जाएंगे, लिहाजा हमें अपनी मुत्तहिदा कुव्वत के साथ यहीं रहना चाहिए और जमहूरी उसूल पर इस वतन में अपने हुकूक की हिफाजत करनी चाहिए। ये उनका नुक्ता नज़र था, और इधर ये नुक्ता नज़र था कि ये जो सूरत बन रही है इसमें मुसलमानों की तहजीब, सकाफत, रवायात, रसूम, मज़हब, उनकी ज़ुबान, इन सब चीज़ों को खतरात लायक हो जाएंगे, इसकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त होना चाहिए, इसके लिए कोई दस्तूरी हुकूक कायम होने चाहिए, अगर ये मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते तो फिर हमें एक अलग मुल्क बना देना चाहिए। ये बड़ी सादा सी बात है जिसको बाद में हमने बहुत ज़्यादा नजरी बनाने की कोशिश की है, एक सादा मुकदमा है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की तहरीक उठी।
अच्छा, तो ये मुसलमानों जब ये जो तहरीक, दो डिफरेंट ओपिनियन आपने बताए, इसका मतलब मुसलमानों की जो अक्सरियत थी वो कायदे आज़म वाले ओपिनियन को सपोर्ट कर रही थी और इसी वजह से वो तहरीक जो है कामयाब भी हुई,
यानी बतदरीज ऐसा हो गया। ये मालूम है कि 1914 के करीब जब अल हिलाल और अल बिलाग का दौर दौरा था, उस वक्त मुसलमानों की क़्यादत ज़्यादातर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही के हाथ में थी और मुसलमान ज़्यादातर उन्हीं पर एतमाद करते थे। उस ज़माने में कायदे आज़म भी इस नुक्ता नज़र के हामी नहीं थे, वो भी बड़े कांग्रेसी के बड़े लीडरों में शुमार होते थे, और भी बहुत से मुसलमान ज़ुआमा थे जो उस ज़माने में यही नुक्ता नज़र रखते थे। सर सैद ने इब्तदा में कुछ इस तरह के ख्यालात का इज़हार किया, फिर बाद में मुस्लिम लीग भी वजूद में आई तो मुस्लिम लीग के सामने भी इस तरह का कोई मुतालबा इब्तदा में नहीं था, ये तदरीजी तौर पर हुआ। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पहले ये कोशिश की गई कि मुसलमानों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुत्तहिदा हिंदुस्तान में हो जाए, यानी पहली चीज़ तो ये है कि हुकूक़ को ख़तरा लायक है, इसका एहसास पैदा होना शुरू हुआ। दूसरे ये कि उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इकदामात तजवीज़ किए गए, ज़ाहिर है कि जो इकदामात तजवीज़ किए जाएंगे उनके लिए दस्तूरी ज़मानत ज़रूरी होगी, उसके लिए कोशिश की गई, ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। इस कोशिश की अपनी एक तारीख है, ज़ाहिर है कि हम इस मुख्तसर प्रोग्राम में वो पूरी तारीख नहीं सुना सकते, लेकिन उस तारीख को अगर आप पढ़ें तो ये मालूम होता है कि बहुत मुखलसाना तरीके पे मुसलमानों की क़्यादत ने, खुद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत कोशिश की कि कोई ऐसा फार्मूला बन जाए जिसके नतीजे में मुत्तहिदा हिंदुस्तान ही में रहते हुए मुसलमान अपने हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। इसमें जब कामयाबी नहीं हुई तो बतदरीज ऐसा हुआ कि पाकिस्तान का मुतालबा सामने आना शुरू हो गया। ये तदरीजी तौर पर हुआ है, ऐसा नहीं कि पहले ही दिन ये चीज़ सामने आ गई थी। आपके इल्म में है कि आखिरी ज़माने में आकर भी कैबिनेट मिशन प्लान, यानी जिसमें मुत्तहिदा हिंदुस्तान में एक फार्मूला बना दिया गया था, उसको कायदे आज़म ने और मुस्लिम लीग ने कबूल कर लिया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक बयान के नतीजे में वो सारा मामला ख़त्म हो गया और फिर मुस्लिम लीग अपने उसी मुतालबे पर वापस आ गई कि नहीं, एक अलग मुल्क बनना चाहिए। तो ये एक तदरीजी अमल है, ये ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया था।
अच्छा जावेद साहब, ये आप फरमा रहे हैं कि कायदे आज़म ने जो खालिसतन कौमी उसूल पर कौमी जो है रियासतों का तसव्वुर दिया था, तो ये ममलिकत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो सफ़र है ममलिकत पाकिस्तान से इस्लामी ये कैसे हुआ, और ये क्या कायदे आज़म के तसव्वुर में ये बात नहीं थी?
कायदे आज़म तो बड़ी सादा सी बात कह रहे थे, और वो ये है कि चूँकि मुसलमान मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अपने हुकूक की हिफाजत की कोई शक्ल नहीं निकाल पाए, इस वजह से एक कौमी रियासत पाकिस्तान के नाम से वजूद में आनी चाहिए।
ठीक।
वो ये नहीं कह रहे थे कि मुसलमान इसके कोई मालिक हो जाएंगे, या हिंदू भी थे, यानी मशरकी पाकिस्तान में तो उनकी बहुत बड़ी तादाद थी, यहाँ बुद्ध भी थे, यहाँ मसीही भी थे, ये सब मिलकर अपनी एक कौमी रियासत बनाएंगे और हम जो हुकूक चाहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में मिले, हम वो हुकूक इनको यहाँ देंगे, और इस तरीके से वतन की बुनियाद पर एक कौमियत वजूद में आएगी। ये एक जमहूरी रियासत होगी, जमहूरी उसूलों पर इसका नज़म चलाया जाएगा। और इसमें जब लोग उनसे ये पूछते थे कि क्या यहाँ कुरान और सुन्नत के कानून के मुताबिक मामलात नहीं चलेंगे, तो वो ये कहते थे कि मुसलमानों की अक्सरियत है, पार्लियामेंट में वही होंगे, इसलिए ये सवाल शरारत पर मबनी है। मुसलमान जहाँ अक्सरियत में है, पार्लियामेंट में अक्सरियत में है, तो वो कुरान को खुदा की किताब मानते हैं, पैगंबर की सुन्नत के मानने वाले हैं, इसलिए उसका लाजमी नतीजा यही निकलेगा कि यहाँ पर जो कानून साजी होगी वो अल्लाह के दीन के उसूलों के मुताबिक होगी। जगह जगह उन्होंने इसका जवाब दिया है, उनका तसव्वुर बिल्कुल वाज़ह था। देखिए, जहाँ भी आप कोई हुकूमत कायम करते हैं तो एक चीज़ है रियासत, रियासत तो आप जानते हैं कि हुकूमत से एक मुख्तलिफ चीज़ होती है, यानी रियासत के बारे में ये बहस हो सकती है कि वो किस बुनियाद पर कायम हुई है। पाकिस्तान की रियासत किस उसूल पर कायम हुई, मैं ये कहता हूँ कि वतनी कौमियत की बुनियाद पर कायम हुई है, जिस तरह के दुनिया में जदीद कौमी रियासतें अब कायम हो रही हैं, इसी उसूल पर कायदे आज़म ने इसका मुतालबा किया। इसमें हुकूमत कौन करेगा? ज़ाहिर है हुकूमत वो लोग करेंगे जिनकी अक्सरियत होगी, तो यहाँ अक्सरियत क्योंकि मुसलमानों की थी, इस वजह से कायदे आज़म ने हमेशा यही कहा कि यहाँ मुसलमान अक्सरियत में है और मुसलमानों के पास अल्लाह की किताब मौजूद है, उनके पास अपना एक कानून मौजूद है, उसका ज़हूर हो जाएगा और ये बिल्कुल जमहूरी तरीके से होगा, इसके लिए आपको कोई दस्तूरी तहफ़ुज़ात की ज़रूरत नहीं। उसका ज़हूर हो जाएगा और ये बिल्कुल जमहूरी तरीके से होगा, इसके लिए आपको कोई दस्तूरी तहफ़ुज़ात की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान तो बना ही इस उसूल पर था कि चूंकि यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, तो वो अपने मज़हब, अपनी रवायात, अपने रसूम, अपनी सकाफत के साथ जैसे ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं करें। तो अगर मुसलमान चाहेंगे कि उनकी पार्लियामेंट में इस्लाम की रोशनी में कानून साजी हो, तो चूँकि उनकी अक्सरियत है, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। ये सादा बात है जो कायदे आज़म ने कही।
ठीक है, यहाँ कोई क्वेश्चन है किसी का?
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खावर मुगल खान है। मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक स्टेट है, इसका नाम भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के कवानीन और आइन को तब्दील करने की ज़रूरत है कि इसको इस्लामी बनाया जा सके?
हमारे यहाँ इस वक्त हमारे आइन में बहुत सी इस्लामी दफात लिख दी गई हैं, करारदाद मकासद को आइन का हिस्सा बनाया जा चुका है, बहुत से कवानीन इस्लाम के नाम पर यहाँ नाफिज हो चुके हैं, तो इस वजह से वो क्या चीज़ है कि जिसकी मज़ीद ज़रूरत बाकी रह गई है? आपने ख़ुद बता दिया कि नाम भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है।
जावेद साहब, इसके ज़मीन में मैं ये पूछना चाहूँगा कि कायद अजम का ये ओपिनियन था कि यहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों की होगी और वो जैसे चाहेंगे उस तरह से फ़ैसला हो जाएगा। जाहिर है कि इस्लाम, अगर वो मुसलमान है तो वो इस्लाम की बुनियाद पर फ़ैसले करेंगे। अगर यहाँ पर इस वक्त अक्सरियत है और वो अक्सरियत ममलिकत पाकिस्तान के बजाय इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को प्रेफर कर रही है, तो आपकी राय, आपने जो अक्सर अपनी राय का जिक्र किया है, आप फरमाते हैं कि रियासत का कोई मज़हब नहीं होना चाहिए, वो रियासत का कोई मज़हब नहीं होना चाहिए आपकी राय है, लेकिन यहाँ के जमहूर का ये फ़ैसला है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होना चाहिए, तो फिर क्या प्रॉब्लम है?
जमहूर के फ़ैसले की बुनियाद पर रियासत की नौीयत तय नहीं की जा सकती। उसकी वजह यह है कि किसी रियासत को या तो आप इस उसूल पर कायम करेंगे कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत ने या एक कौम ने या एक गिरोह ने या एक तबके ने उसको फतह कर लिया है, तो फिर तो आपको हक हासिल है कि आप फाते हैं, जो कुछ आपकी ज़ुबान से निकलेगा वही दस्तूर है, वही कानून है।
जावेद साहब, देखा जाए तो एक तरह से फतह ही किया ना हमने, इंडिपेंडेंस जो अंग्रेज़ों से ली। तो
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बात यह है कि हिंदुस्तान की तकसीम का फ़ैसला कराया आपने, हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ी गई, यानी ये कोशिश की गई कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाए। आज़ादी की बुनियाद क्या थी? जमहूरियत। यानी लोगों को हक मिलना चाहिए कि वो फैसला करें।
वही जमहूरियत ही तो कह रही है।
लोगों ने, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि लोगों ने फैसला किया कि वो अपनी एक अलग ममलकत बनाएंगे,
ठीक है,
और ये अलग ममलकत जिस उसूल पर बनाई गई उसका मैंने पूरा पस मंज़र आपको बता दिया है। अब ये रियासत किस नौइयत की बनाई है आपने, किस तरह की रियासत बनाई? क्या आपने ये रियासत इस उसूल पर बनाई कि ये अब मुसलमानों की मलकियत हो गई है और उधर हिंदुस्तान हिंदुओं की मलकियत हो गया है? नहीं, वो भी एक वतनी कौमियत की बुनियाद पर बनने वाली रियासत है, ये भी एक वतनी कौमियत की बुनियाद पर बनने वाली रियासत है। दोनों रियासतों में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, वहाँ हिंदू भी हैं, वहाँ मुसलमान भी हैं, वहाँ बुद्ध भी हैं। इस वक्त मुसलमान वहाँ 20 करोड़ से ज़्यादा हैं, अगर आप गौर करें तो बहुत बड़ी तादाद है। 20 करोड़ कोई मामूली तादाद नहीं होती। इस वजह से ये इस उसूल पर नहीं बनी कि उस हिस्से को हिंदुओं ने फतह कर लिया है और उस फतह के नतीजे में अब उनको हक हासिल है कि वो वहाँ पर एक हिंदू रियासत कायम कर दे। इसी तरह ये इस उसूल पर नहीं बनाई गई कि इसको मुसलमानों ने फतह कर लिया है, कौमी रियासतें बनाई गई। कौमी रियासतों में हुकूमत कौन करेगा? हुकूमत जमहूर करते हैं, यानी जमहूरियत का उसूल ये है कि हुकूमत करने के लिए जिसको अक्सरियत है। देखिए, इन दोनों का फ़र्क समझ लें। रियासत रियासत पाकिस्तान है, मैं उसका एक शहरी हूँ, आप उसके एक शहरी हैं, हम सब उस रियासत के बाशिंदों की हैसियत रखते हैं, बराबर के हकूक के साथ खड़े हैं। हुकूमत यहाँ पीपल्स पार्टी की हो सकती है, मुस्लिम लीग की हो सकती है, तहरीक इंसाफ की हो सकती है, कल कोई और जमात हुकूमत कर सकती है, हुकूमत किसी की भी हो सकती है। कोई हुकूमत अपना मंशूर लेके आती है, जब सियासी पार्टियाँ इलेक्शन लड़ती हैं तो अपना मंशूर पेश करती हैं। ज़ाहिर है कि लोग जिसकी तायद करते हैं वो हुकूमत करने का हक रखता है। वो वहाँ चाहते हैं कि यहाँ मुसलमानों के जो कुरान मजीद में कवानीन बयान किए गए वो नाफिज किए जाएँ, करें नाफिज, उस पर कोई रुकावट नहीं है। लेकिन रियासत की नौइयत तय करने का काम जमहूर का नहीं है, वो रियासत के पूरे बाशिंदों का काम है। और आपके इलम में होना चाहिए कि जिस मौके के ऊपर रियासत की नौइयत तय करने के लिए करारदाद पेश की गई थी, किसी एक गैर मुस्लिम ने भी उसके हक में वोट नहीं दिया था। 13 उस वक्त गैर मुस्लिम थे आपकी दस्तूर साज असम्बली में, उनमें से किसी ने उसके हक में वोट नहीं दिया था। तो इस वजह से वो चीज़ जो इंसाफ के ख़िलाफ़ है, मैं उसकी तायद नहीं कर सकता। मुसलमान यहाँ अक्सरियत में है, उनको पूरा हक है, बल्कि उनका फ़र्ज़ है कि वो अपनी शरीयत के मुताबिक यहाँ कानून साजी करें। ज़ाहिर है कि इस मामले में दो राय नहीं हो सकती। मैंने तो इस पर बहुत काम किया है, लोगों को बताया है कि शरीयत क्या है, उस शरीयत के आदाब व हुदूद क्या है, वो रियासत से कहाँ मुतल्लक होती है, रियासत से मुतल्लक उसके अहकाम क्या हैं, उनकी एक पूरी फहरिस्त मरतब करके बता दी है। ये ज़रूर उनको करना चाहिए, लेकिन रियासत की नौइयत तय करना, इसका हक उनको हासिल नहीं है। ये रियासत की नौइयत ये है कि ये वतन की बुनियाद पर कायम होने वाली रियासत है, हम सब पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान एक कौमी और वतनी रियासत की बुनियाद पर हमेशा रहेगा और मौजूद है। इसके अंदर हुकूमत करने का हक जमहूर को है, अक्सरियत, यानी ये उसूल मान लिया गया है, और जमहूर जिस कानून को नाफिज करना चाहते हैं वो नाफिज करें। उसके ऊपर तनकीद होगी, कोई गलती होगी, कल जमहूर की अक्सरियत उसको तब्दील कर सकती है। रियासत की नौइयत तय करने का हक उनको हासिल नहीं।
रियासत की नौइयत का तायुन करने का हक किसी को नहीं है, हर बाशिंदे को है, आपने ये फरमाया था। तो आप ही के फार्मूले को लेकर चलते हैं, आप ये फरमाते हैं कि जो हर बाशिंदा है वो उसका नुमाइंदा मौजूद है, और ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जमहूरी सिस्टम है, हर बाशिंदे का नुमाइंदा वहाँ मौजूद है, और वो फैसला अगर कर रहे हैं कि इस रियासत की नौइयत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होनी चाहिए और अमरुहुम शूरा बैनहुम वाले प्रिंसिपल पे मान रहे हैं, तो फिर ये आप क्यों फरमा रहे हैं कि रियासत को सेकुलर ही होना चाहिए हर हाल में?
मैंने तो ये लफ्ज़ कभी ना इस्तेमाल किया, ना मैं इसको इस्तेमाल करना कभी पसंद करता हूँ। मेरे नज़दीक रियासत की नौइयत तय करने का काम तारीख करती है। आप कौन सी रियासत कायम कर रहे हैं? मैंने गुजारिश किया कि अगर आप फतुहात की रियासत कायम कर रहे हैं, उसकी बुनियाद पर आपने रियासत कायम किया, जैसे बरतानवी सल्तनत थी, तो वहाँ तो जाहिर है कि बादशाह सलामत तय करेंगे कौन सी रियासत होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। उसका भी ये मतलब नहीं है कि फतुहात की बुनियाद पर रियासतें कायम होनी चाहिए या मैं उसकी तायद करूँगा। ये एक तारीखी अमल है। आप ये बताइए ना मुझे कि आपकी कौमियत क्या है, पाकिस्तानी है या मुसलमान है? आप जब अपने पासपोर्ट पर लिखते हैं तो पाकिस्तानी लिखते हैं ना,
ठीक।
एक हिंदू भी यही लिखता है, एक बुद्ध भी यही लिखता है, एक सिख भी यही लिखता है, एक मसीही भी यही लिखता है। तो इसका मतलब है कि आपने वतनी कौमियत की बुनियाद पर एक रियासत कायम की है। वतनी कौमियत की बुनियाद पर जो रियासत कायम की गई है वो पाकिस्तान है, उसका नाम आपने पाकिस्तान रखा,
उसका नाम पाकिस्तान है ना,
जब आप तहरीक चला रहे थे। उसके बाद आप कहते हैं हम इसका नाम अब मज़हब के नाम पर रखना चाहते हैं,
ठीक।
तो यहाँ बहुत से मज़ाहिब के लोग हैं, उन्हें आमादा कीजिए कि वो भी इसके लिए तैयार हो जाए। उन्होंने इसके खिलाफ़ वोट दिया। करारदाद मकासद के हक़ में किसी एक गैर मुस्लिम का वोट भी नहीं आया। इसलिए दस्तूरी मामलात, यानी जब आप एक कौम का दस्तूर बना रहे होते हैं, जब कौम की नौइयत तय कर रहे होते हैं, ये महज अक्सरियत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। अक्सरियत की बुनियाद पर आपको हक़ हुकूमत हासिल है, और हक़ हुकूमत हासिल है तो ज़ाहिर है कि आपको कानून साजी का हक़ है। आप कानून बनाएँ, आपको मुसलमान की हैसियत से अपनी शरीयत पर अमल करना चाहिए, इसी की हम सब दावत देते हैं। یعنی ایک فرد کی حیثیت سے مجھے اللہ کا حکم ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے حج کرنا ہے، اسی طرح جب میں مسلمانوں کا حکمران ہوں تو اس حیثیت سے بھی اللہ نے مجھے کچھ احکام دیے ہیں، مجھے ان کی پیروی کرنی ہے، یہ مجھے حق حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثریت کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے، اکثریت کی بنیاد پر، جمہور کی بنیاد پر حق حکومت حاصل ہوتا ہے، ریاست کی نوعیت طے کرنے کا حق ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔
ٹھیک، ایک یہاں سے کوئسچن لیتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام سید معظم الدین ہے۔ میرا سوال ہے کہ کیا کسی معاشرے کو اسلامی کرنے کے لیے اسے مکمل طور پر تبدیل کرنا ہوگا یا کچھ چیزوں کو اپنا کر کافی ہے اس کے لیے اپنانا اس کے لیے؟
کسی معاشرے کو اسلامی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لوگ مسلمان ہوتے ہیں، میں جب مسلمان ہو جاتا ہوں تو میں گویا یہ بات مان لیتا ہوں کہ میرا ایک پروردگار ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اللہ کی ہدایت مل گئی ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ ظاہر ہے کسی علاقے کے اندر اگر بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ان حقائق کو مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، ایک دن ہمیں اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور ہمیں یہ ہدایت محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے ملی ہے، تو اس کا ظہور ان کی انفرادی زندگی میں بھی ہوگا، ان کی اجتماعی زندگی میں بھی ہوگا۔ اس کے لیے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ ظہور بہتر طریقے پر ہو تو اس کا طریقہ خود قرآن مجید نے بتا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کو نصیحت کر سکتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، خاندان کو چاہیے کہ پہلے خاندان کی تربیت کرے، سوسائٹی میں بحثیت مجموعی تعلیم کا نظام بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد کا ایک ممبر قائم کیا گیا ہے، اس میں حکومت سے بھی کہا گیا ہے کہ حکمران وہاں آئیں اور وہ معاشرے کے اندر جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس کے لیے لوگوں کو نصیحت کریں، تلقین کریں۔ تو یہی طریقہ ہے جو آپ اختیار کریں گے، اس کے نتیجے میں یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آپ کی کتنی بات مانتے ہیں اور کتنی نہیں مانتے، کچھ زیادہ مانیں گے کچھ کم مانیں گے، یہی چیز ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تو آپ مسلمانوں کے معاشرے میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں فرد کو مخاطب کیا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو تبدیل کرے، وہ اپنے آپ کو بہتر بنائے، وہ اپنے مذہب کے تقاضوں کو پورا کرے، اپنی روایات کو اپنے پیش نظر رکھے، اس کے اندر جو اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، ان کو توانا کرنے کا کام یہ ہے در حقیقت جو کرنا ہے۔ علماء کی بھی ذمہ داری یہی ہے اور باقی لوگوں کی بھی ذمہ داری یہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ لوگوں کی ایکسیپٹنس کے لحاظ سے نکلے گا، یعنی وہ کتنا کسی چیز کو قبول کرتے ہیں۔ اس میں مجھے یا آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم بزور یا قانون کی طاقت سے کسی چیز کو ان پر ٹھونس دیں، یعنی لوگوں کو بتانا ہے، تعلیم دینی ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے اور لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کتنی بات کو قبول کرتے ہیں، کتنی بات کو قبول نہیں کرتے۔
ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال ہے۔
السلام علیکم سر، میرا نام سید علی حیدر ہے۔ سر، جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے سر، یہ ایک اچھی قیادت سے محروم رہا ہے۔ سر، سوال میرا یہ ہے کہ اچھی قیادت سے محروم قوم کی اکثریت اپنے صحیح فیصلے کیسے کر سکتی ہے؟
پاکستان اچھی قیادت سے محروم نہیں ہے، پاکستان اچھی قوم سے محروم ہے۔ اصل میں ہم اوپر دیکھتے ہیں، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو ملاوٹ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، کاروبار میں اسلامی حدود کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں، اپنا وقت ٹھیک طریقے سے صرف کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، اپنے مذہب کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ تو قومی حیثیت سے ہم گراوٹ میں ہیں۔ جب قومی لحاظ سے پستی میں کوئی قوم گر جاتی ہے تو قیادت بھی ویسی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیادت اچھی میسر نہیں آئی آپ کو، صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو اچھا بنانے کی کوشش نہیں کی۔ آپ قوم پر محنت کریں، جس وقت قوم اچھی ہوگی، اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا، ریاست اور حکومت اسی کا ظہور ہوتا ہے، وہ اوپر سے نہیں لائی جا سکتی۔ انسان کو اعلیٰ انسان بنانے کا کوئی دوسرا طریقہ ابھی تک ایجاد نہیں ہو سکا۔ انسان جبلتوں کا پابند نہیں ہے، جانوروں کی طرح یہ نہیں ہے، کچھ انسٹنکٹس ہیں جن کی وہ پیروی کرتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو خام جگہ سے شروع کرتا ہے، اپنی تربیت کرتا ہے، اپنی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، اپنی تہذیب کرتا ہے، یا جس کو مذہبی اصطلاح میں کہتے ہیں اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے، بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایجوکیشن، ہماری ساری توجہات کا مرکز یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی قوم کو تعلیم دے کے مہذب قوم بنائیں، اس کو زندگی کے آداب سکھائیں، اس کو بتائیں کہ اس کو ووٹ کیسے دینا ہے، رائے کیسے دینی ہے، اختلاف کیسے کرنا ہے، مل جل کر کیسے رہنا ہے، اعلیٰ اخلاق کے مطابق زندگی کیسے بسر کرنی ہے، گھریلو معاملات میں خدا کے حدود کا کیسے پاس کرنا ہے، اپنی معیشت میں، معاشرت میں ان کا کیسے پاس رکھنا ہے۔ جتنا زیادہ لوگوں کی تربیت آپ کریں گے، اس کا ظہور اصل میں ریاست میں ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ہی بالکل غلط لوگوں نے ذہن میں قائم کر لی ہے کہ آسمان سے کوئی مسیحا آئے گا اور وہ آ کر ہم سب کو ٹھیک کر دے گا۔ نہیں، ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ ہم اپنی قوم کو، پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، پھر اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں۔ آپ ذرا ایک سروے کر کے دیکھیے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ طریقے سے اپنے دین ہی کو جاننے کے لیے کبھی وقت نکالا ہے، کتنے لوگ ہیں؟ تو اس وجہ سے ہمیں دوش اپنے آپ کو دینا چاہیے قیادت کہیں آسمان سے نہیں آتی، قیادت قوم سے پیدا ہوتی ہے، جیسی قوم ہوگی ویسی قیادت ہوگی۔ موجودہ زمانے میں آپ جمہوری اصول پر نظم چلا رہے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام حفصہ خالد ہے۔ سر، پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے جبکہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں جمہوریت نہیں ہے، تو پھر ان کا نظام ہم سے بہتر کیوں ہے؟
یہ فیصلہ تو کرنا بڑا مشکل ہے کس کا نظام بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت اصل میں اس اصول کو ماننے کا نام ہے کہ لوگوں کو حکومت کرنی ہے، لوگوں کو حکومت کا فیصلہ کرنا ہے، لوگوں کو منتخب کر کے اپنے حکمرانوں کا تقرر کرنا ہے، لوگوں کی مرضی سے وہ ذمہ داری سنبھالیں گے، لوگوں کی مرضی ان کو حاصل نہیں رہے گی تو یہ ذمہ داری بھی ان کے پاس نہیں رہے گی۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگ آزاد ہوں گے، وہ اپنی رائے دینے میں آزاد ہوں گے، نقطہ نظر بیان کرنے میں آزاد ہوں گے۔ تو جن مملکتوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان کے اندر تو آپ سانس بھی نہیں لے سکتے، تو اس وجہ سے خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ ہم تو اپنے اس ملک میں بیٹھ کر تنقید کر سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں۔ بحثیت مجموعی پاکستان سے بہتر ملک آپ کو دنیا کے کسی خطے میں اور نظر نہیں آئے گا۔ جتنی آزادی اور حریت یہاں رہی ہے، جیسے مواقع ہم کو میسر ہے اپنی بات کہنے کے، یہ کہیں بھی میسر نہیں ہے۔
جاوید صاحب، ایک بنیادی سوال ابھی آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے رائے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حکمران منتخب ہوں گے۔ ایک بنیادی سوال جو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ جمہوریت کے قائل ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسلام ہمیں جمہوریت کا تصور نہیں دیتا بلکہ وہ تو خلافت کا تصور دیتا ہے۔
اسلام میں تو یہ بات سب سے پہلے کہی گئی، یعنی موجودہ جو تاریخ ہے دنیا کی اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے قرآن نے یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں کا نظم جمہوری اصولوں پر قائم ہوگا۔ امرہم شورا بینہم، یعنی اس سوال کا قرآن مجید نے واضح اور قطعی جواب دے دیا کہ مسلمانوں کے ہاں حکومت امرہم شورا بینہم کے اصول پر آئے گی، یعنی لوگوں کی رائے سے، لوگوں کے مشورے سے حکمران آئیں گے، انہی کے مشورے اور ان کی رائے کی بنیاد پر حکومت قائم رکھیں گے، اس سے محروم ہو کر رخصت ہو جائیں گے۔ تو یہ تو قرآن مجید کا بیان کردہ اصول ہے، اور قرآن مجید کے اس اصول پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اسی کے مطابق خلفائے راشدین کی حکومتیں قائم ہوئیں۔ اسلام میں جو بات کہی ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے اور ان کے مشورے کی بنیاد پر قائم ہوگا، یہی جمہوریت ہے۔
ہمارے جو خلیفہ منتخب ہوئے تھے وہ بھی پورے جمہور کی رائے سے منتخب ہوئے؟
جی یقیناً، ظاہر بات ہے کہ جمہور کی رائے کیسے لینی ہے، اس کے لیے قبائلی معاشرت میں اور طریقہ اختیار کیا جائے گا، آج کے زمانے میں اور طریقہ اختیار کیا جائے گا، ہو سکتا ہے 200 سال بعد بالکل مختلف طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس زمانے کے تمدن میں اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو اس طرح ووٹ ڈالنے کے لیے کہیں، اس میں چونکہ قبائلی لیڈر موجود ہوتے تھے تو ان کے مشورے اور ان کی رائے کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے فیصلے کیے جاتے تھے، یہی اس زمانے کا جمہوری طریقہ تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیے آپ کے خلفائے راشدین بالکل اسی طرح منتخب ہوئے ہیں، اسی طریقے سے لوگوں نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا، کوئی کو نہیں ہوا، کوئی جتھا نہیں منظم کیا گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگلے دن ہتھیار باندھ کر نہیں آئے تھے، مسجد میں آ کے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے، لوگوں نے اس کی تائید کی اور انہوں نے ان کے ساتھ وفاداری کا عہد باندھا۔ بالکل اسی طریقے سے، آپ اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا بلکہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کس طرح جمہوری طریقے پہ مشورہ ہوا ہے، کیسے رائے دی گئی ہے، کیسے لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بالکل جمہوری اصولوں پر فیصلے کیے۔
گویا جاوید صاحب، لاسٹ نوٹ میں جاننا چاہوں گا، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ جو جمہوری طریقہ ہے وہ اس پہ تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ پروسیجر کیا ہے حکمرانوں کو منتخب کرنے کا، اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے، تاہم فیصلہ جمہوری طریقوں سے ہی ہوگا۔
اصول یہ ہے کہ لوگوں کو فیصلہ کرنا۔ دیکھیے نا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکمران کا تقرر کیسے ہوگا۔ ایک آدمی کہتا ہے ایک طبقے کو حکمرانی کا حق حاصل ہے،
ٹھیک،
مثال کے طور پر قدیم یونانی فلسفی کہتے تھے کہ فلسفیوں کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے، کوئی آدمی کہتا ہے علماء کے پاس ہونی چاہیے، کوئی اور بات کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے۔ تو یہ بنیاد ہو گئی۔ اب لوگوں کو فیصلہ کرنے کے لیے آپ طریقہ کیا اختیار کریں گے، وہ زمانے اور حالات کے لحاظ سے ہوگا۔ آج ایک اختیار کیا جا سکتا ہے، کل دوسرا اختیار کیا جا سکتا ہے۔
میں آپ سے ایک صرف کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں، 1940 کے اس سے جو تحریک پاکستان میں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس کی روشنی میں تو پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ کنٹروورسی کیا ہے؟ اب ہمیں غلط ہسٹری بتائی گئی ہے یا وہ غلط تھا؟
نہیں دیکھیے، جب عوام میں کوئی تحریک جاتی ہے اور وہاں نعرے کیا لگتے ہیں، وہ عوام جو بھی چاہے لگا لیں۔ آپ جانتی ہیں کہ جب تحریکیں چلتی ہیں تو اس میں لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا جاتا ہے، تو جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز مذہب ہے، اس لیے کہ مذہب کی بنیاد پر آپ لوگوں کے اندر ایک جذباتی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں۔ کسی چیز کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اس موومنٹ کی قیادت کر رہے تھے، اور اس میں ظاہر ہے کہ سب سے ممتاز ترین حیثیت قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے، ان کی تقریریں موجود ہیں، ان کی تحریریں موجود ہیں، ان کے مجموعے اس وقت شائع ہو چکے ہیں، آپ ان کو پڑھ لیجئے، وہ دو ہی باتیں کہتے ہیں، کوئی ان کی زندگی کے پورے اس عمل میں کنٹرڈکشن نہیں آپ کو نظر آئے گی، دو ہی باتیں کہتے ہیں، یہ جدید جمہوری اصولوں پر قائم ہونے والی ایک وطنی حکومت ہوگی، اس میں مسلمانوں کو اکثریت ہے اور مسلمان اپنے مذہب کے مطابق یہاں پہ قانون سازی کریں گے، یہ دو باتیں کہتے ہیں۔
ٹھیک، تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اسکرین پر آپ کو ایک ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا، آپ اس ای میل ایڈریس کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، آپ کے جو کوشچنز ہوں گے وہ ہم کسی اگلے پروگرام میں اس کو ٹیک اپ کریں گے، اور اگر کوئی اور ٹاپک جس پر آپ ڈیبیٹ سننا چاہتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اس پر ہم کوئی پروگرام ضرور ارینج کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔